ஓம் சாந்தி. பாபா நீ எக் முரளி மே கஹா தா கி பஹலே அப்னி செக்கிங் கரோ ஔர் ஃபிர் சேஞ்ச் கரோ. அகர் செக் கர் லேதே ஹோ ஔர் ஃபிர் சேஞ்ச் நஹீ கர்தே ஹோ தோ தில் ஷிகஸ்த் ஹோ ஜாதே ஹோ. தோ ஜெஸே ஹம்னே தோடி தேர் பஹலே மனன் கியா கி பவித்ரதா கி பிரகாஷ் पे पहुंचने के लिए हमको चुन चुन करके अपने पुराने संस्कार खत्म करने हैं. जैसे घर में दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो कंकर चुनते हैं ना, उसमें से एक भी कंकर अगर बीच में हो तो सारी खिचड़ी का मजा ही किरकिरा हो जाता. तो ये पुराने संस्कार भी कंकरों की तरह से हैं. किसी में कोई है, किसी में कोई है, किसी में थोड़ा है, किसी में अंश है, किसी में, लेकिन थोड़ा भी फिर हथौड़ा बन जाता है और अंश फिर वंश बन जाता है. तो अभी कुछ मिनट्स के लिए पहले ये चेक करेंगे कि मेरे में कौन कौन से पुराने संस्कार सिर उठाते हैं, कौन कौन से पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, पुरानी स्मृतियां इमर्ज होती हैं. मैं अपनी किन किन पुरानी स्मृतियों से परेशान हूं, चेक कीजिए. चारों तरफ से ध्यान को समेट करके केवल और केवल अपने में ये ध्यान लगाइए. ये कुछ घड़ियां हमें केवल अपने लिए मिली हैं. सारा दिन ये आंखें दूसरों को देखती हैं, लेकिन अब इन आंखों से हम खुद को देखेंगे. ओम शांति. तो कोई कंकर निकली, पहचान में आई कि ये कंकर है. अब जब कंकर निकल आई तो अब क्या करेंगे. बाबा ने एक मुरली में कहा था कि एक तो आपके अनादि संस्कार हैं, वो बिल्कुल शिव बाबा से मिलते जुलते हमारे तो वही हैं, और दूसरे आपके आदिकालीन संस्कार है, वो देवताओं से मिलते जुलते. तो हमारे तो ये दो ही संस्कार है, शिव बाबा से के समान और देवताओं के समान. इसके अलावा जो भी है वो कंकर ही है सारे के सारे. तो जब कंकर पहचान में आ जाता है तो क्या करते हैं, फिर उसको उठा के फेंक देते हैं, है ना. ऐसे तो नहीं कहते कल फेंकेंगे परसों फेंकेंगे, क्या पता है कंकर कभी काम ही आ जाए। तो उसके लिए भी जगदीश भाई ने एक बार कहा था कि मान लीजिए आपकी थाली में आप भोजन कर रहे हैं और आपकी थाली में छिपकली गिर जाए तो क्या सोचते हो, खाते रहोगे चुपचाप खाना, छिपकली भी पड़ी रहे और खाना भी खाते रहेंगे, ऐसा कौन कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, खाना खाए या ना खाए पर छिपकली को पहले बाहर निकाल के फेंकेगा। खाना बेशक उस दिन का मिस हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन छिपकली सामने रहनी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा था ये जो पुराने संस्कार है ना ये भी छिपकली से कम नहीं है, आप इनके साथ कैसे जी रहे हो? वो तो थाली में पड़ी छिपकली है तो आपके भीतर पड़ी है, छिपकलियां बहुत पड़ी है तो इनको निकाल के फेंकना है। अब फेंकने की विधि क्या होगी उसके ऊपर अपने को चिंतन करना है। एक विधि होती है कि सीधा उसको निकाल के फेंक दो, दूसरी विधि क्या होती है कि उसकी जगह कोई दूसरी चीज वहां पे रख दो तो वो अपने आप ही चली जाएगी, जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। उस संस्कार की रिप्लेसमेंट किसी गुण से कर देते हैं, उस गुण के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि रिप्लेसमेंट हो जाती है, पुराना निकल जाता है। जैसे बाल्टी में पुराना जल भरा है ऊपर से अच्छे वाला डाला पुराना निकल गया। तो अभी चिंतन कीजिए कि रिप्लेसमेंट कैसे करनी है। ओम शांति। अब हम ये चेक करेंगे कि वस्तु या व्यक्ति दोनों में से मेरी बुद्धि में किस किस का आकर्षण है। किसी व्यक्ति का आकर्षण तो नहीं है। पहले व्यक्ति का चेक कीजिए। जैसे साकार बाबा की बात सुनाते हैं कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती थी ना, तो साकार बाबा को कभी कोई व्यक्ति याद नहीं आया। सीधा योग करो, बाबा को याद करो, बाबा का काम है, बाबा करेगा, बाबा करेगा। आमतौर पे मनुष्य किसी नियर एंड डियर को याद करता है, लेकिन बाबा ने कभी किसी व्यक्ति को याद नहीं किया। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि एक होता है सहयोग और एक होता है सहारा। तो सहयोग तो हम लेते हैं, सहयोग के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। संसार में एक दो के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। सहयोग का मतलब होता है कि सामने वाले से मैंने 10% सहयोग लिया, 90% मेरी ताकत लगाई, ये है सहयोग। और जब हम किसी को सहारा बना लेते हैं तो अपनी ताकत तो 10% ही लगाते हैं, 90% उससे लेने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा था सहारा केवल एक शिव बाबा है और सहयोगी तो दुनिया का कोई भी मनुष्य हो सकता है। तो हमको ये चेकिंग करनी है कि मैंने किसी को सहारा तो नहीं बना रखा। कोई बात आती है तो मुझे भगवान को छोड़ के कोई व्यक्ति तो याद नहीं आता। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं। अगर ऐसा कुछ है तो आज से हम उसको चेंज करके जाएंगे। सहारा केवल एक शिव बाबा है, उसी का सहारा लेना है। अगर किसी व्यक्ति का लेते भी हैं तो हिसाब किताब जुड़ता है, फिर वो कई गुना हमको लौटाना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो सतयुग में जाकर के। तो पहली चेकिंग ये करेंगे कि किसी व्यक्ति में आसक्ति, आकर्षण, सहारा या डिपेंडेंसी तो नहीं है। चेक कीजिए। ओम शांति। तो सबको क्या उत्तर आया? एक भरोसा, एक बल, अर्थात सहारा केवल एक शिव बाबा है, बाकी सहयोग तो सबका हम लेते भी हैं और देते भी हैं। और अब अगला प्रश्न है हमारा कि किसी पदार्थ में तो आसक्ति नहीं है। भर्तृहरि का एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें उसने कहा है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मनुष्य बूढ़ा हो गया पर उसकी तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई। उसका एक वैराग्य शतक है, उसमें उसने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं कि इच्छाएं कैसे आदमी का पीछा करती हैं। उसका भी पीछा किया ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया था, सुनी है ना बात। फिर एक चांदनी रात में जा रहा था तो उसे लगा कि कोई हीरा मोती पड़ा हुआ है चांदनी रात में। महल छोड़ दिया, महारानी छोड़ दी, मुकुट छोड़ दिया, सोने चांदी का कपड़ा छोड़ दिया, कफनी ले ली, सब कुछ कर लिया सन्यासी, पर हीरे में अभी भी आसक्ति मौजूद है। तो उसने सोचा ये हीरा मैं उठा लूं, जबकि हीरे से भरा हुआ खजाना छोड़ के आया। और जैसे ही ऐसे हाथ मारा तो क्या हुआ, हाथ गंदा हो गया, क्योंकि वो वास्तव में चांदनी रात में चमक रहा था पर हीरा नहीं था, वो कोई गंदी चीज थी, किसी के पान की पीक थी। तब उसने कहा कि देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया फिर भी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, लेकिन हमारी तो तृष्णा जीर्ण हो गई ना। वो तो सन्यासी था, उसके साथ शिव बाबा थोड़े था, हमारे साथ तो शिव बाबा है। इसलिए केवल आवश्यकता पूर्ण करनी है व्यक्ति को, दो रोटी चाहिए, चार गज कपड़ा चाहिए और एक जोड़ी जूता चाहिए, बस। अधिक खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, अधिक पहनेंगे तो लोग आगरा भेज देंगे। एक साथ दो जोड़े जूते किसी ने पहन लिए तो आगरा की ट्रेन तैयार है, यहाँ से सीधी जाती है। तो चेकिंग करेंगे कि किसी वस्तु, किसी पदार्थ में खाने पीने पहनने देखने इकट्ठी करने सजने सजाने की कोई भी चीज मुझे आकर्षित तो नहीं करती। बाबा से अधिक आकर्षणमय कोई चीज दुनिया में लगती तो नहीं है। अब ये अगली चेकिंग करेंगे। ओम शांति। और बाबा ने कहा था, बच्चे क्रोध को तो जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चे बहुत सारे हैं। उसके बाल बच्चे, सबसे ज्यादा बाल बच्चे इसी के, ईर्ष्या, घृणा, रोब, दबाव, बदला, बात ना करना, आंख ना मिलाना, ब्लेम लगाना, हक ना देना, चुगली करना, कानाफूसी करना, अपमान कर देना, इसके बाल बच्चे बहुत, बड़ा परिवार है इसका। कई लोग कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है, पर किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि गुस्सा आता नहीं है, आप जानबूझ के उसे बुलाते हैं। कैसे? तो उसने कहा, मान लीजिए ऑफिस में साहब डांट मार दे, आपकी गलती नहीं थी, तो आप चुपचाप सुन लेते हो, एक दो तीन चार कितनी भी डांट मारी चुपचाप सुन लेते हो, जबकि वहां गुस्सा आना चाहिए कि साहब मैंने गलती की नहीं, आप डांट क्यों मार रहे हो। गर्दन झुका के थोड़ा दूरी पे खड़े होके चुपचाप सुनते रहते हैं। और फिर घर आते हैं तो हमारे दो बच्चे हैं, बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को मारा के नहीं मारा, पर छोटा बच्चा रोता हुआ आता है कि भैया ने मुझे मारा, और हम छोटे को गोदी में उठा के बड़े के पास जाते हैं और बिना ही पूछताछ के सीधे दो थप्पड़। तो वहां तो साहब ने झूठी बात कही, झूठा ब्लेम लगाया, तो भी गर्दन झुकी रही, और यहाँ बात की जांच पड़ताल ही नहीं की और सीधे थप्पड़ लगा दिए। तो इसका मतलब गुस्सा अपने आप आया कि हमने किया? अपने आप नहीं आया, अपने आप आता तो वहां आता, पर वहां अंदर में समझती एक बार गर्दन उठाई और नौकरी गई, इसलिए नौकरी बचाए रखने के लिए गर्दन तो झुका के रखनी ही पड़ेगी। और यहाँ कौन सी नौकरी जा रही है, घर में आए तो, यहाँ तो दो की जगह चार भी मार दो कौन हिसाब पूछने वाला है। तो यहाँ आ जाता है क्योंकि पता है कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, जो नुकसान होगा वो कभी भविष्य में होगा, करंट होने वाला नहीं है। दो मिनट रो के रह लेगा, खाना तो मेरे ही घर खाना है, रहना तो मेरे ही घर है, घर छोड़ के कहाँ जाएगा। फिर जब यही थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब फिर सोचना पड़ता है, कहीं क्रोध कर लिया और कहीं घर छोड़ के भाग गया तो, उल्टा बोल पड़ा तो, फिर थोड़ा सा गुस्सा अपने आप आना बंद हो जाता है। तो वास्तव में क्रोध की जरूरत ही नहीं है, न क्रोध की न रोब की, इनसे काम बनते तो है नहीं। अगर आप एक डॉक्टर से दवा खाते हो और वो काम नहीं करती तो आप क्या करते हो, उसको खाते ही रहते हो कि खाना बंद कर देते हो? बंद कर देते। और डॉक्टर को ये भी कहते हैं, भाई तेरी दवा बेकार है, आगे से किसी को मत देना और हम भी नहीं लेंगे, दो चार बातें उसे सुना भी देते हैं। और ये क्रोध वाली दवाई कितने जन्मों से खा रही है, इसने कोई काम संवारा क्या? ये कैसी दवा है, काम की दवा है कि नाकाम दवा है? इसके तो साइड इफेक्ट ही बहुत है, खाते ही साइड इफेक्ट हो जाते हैं और फिर भी 63 जन्मों से इसको खाए जा रहे हैं। रावण को कभी कहा ही नहीं कि तू अपनी दवा संभाल ले, ये किसी काम की नहीं है। तो चलिए चेकिंग करते हैं कि छोटे बड़े बाल बच्चे कोई नाली में से कोई खिड़की में से घुस तो नहीं आता, मेन गेट से तो नहीं आते, ये आते हैं चुपके चुपके। तो चेकिंग करेंगे बाल बच्चों की, किसके बाल बच्चे, क्रोध के। ओम शांति। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम को वनवास हो गया तो लक्ष्मण दौड़ा दौड़ा आया और श्री राम को कहा कि राम भैया, राम भैया, आपको पता है केकई ने आपको वनवास दे दिया। तो श्री राम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं कि लक्ष्मण पहले ये बता कि तूने माता के कही को के कही कहना कब से शुरू किया है। और इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने लाइन लिखी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। अर्थात व्यक्ति के धीरज की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की विपत्ति में परख होती है। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं धैर्य की और धर्म की। शांति हमारा धर्म है और कोई छोटी सी बात हो गई तो हमने क्या किया, धर्म को ही छोड़ दिया। विपत्ति आई तो धर्म को पकड़ के रखना था, पर विपत्ति आई तो सबसे पहले एक और विपत्ति आ गई कि हमारा धर्म ही चला गया। तो कुछ भी हो लेकिन मेरा धर्म ना जाए, शांति मेरा धर्म है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ये कहावत जो जिस्मानी योद्धा है ना उनके लिए बनी थी कि भाई लड़ते लड़ते भले धरती में गिर जाओ, धरत पर ये, पर धर्म न छोड़िए, लड़ने का धर्म मत छोड़ना। गिर के भी तलवार चलाते रहना, गिर के भी एक आध दुश्मन को मार देना। तो बाबा उसी कहावत को हमें सुनाते हैं कि भले ही सुनना पड़े, सहना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, पर अपने शांति रूपी धर्म को कभी भी मत छोड़ना। और हमने चर्चा की थी आकर्षणों की, और उसका भी रामायण में बहुत सुंदर जिक्र है। सीता सोने के हिरण पे आकर्षित हो गई। आकर्षित आदमी कब होता है? जैसे एक ये पतंगा होता है ना, ये ट्यूब पे आकर्षित हो जाता है। तो आकर्षित होता है इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। पतंगे के अंदर तो बुद्धि है ही नहीं, मन कहता है कि ये सुंदर है और दौड़ा चला जाता है, और बेचारे में बुद्धि है नहीं तो टक्कर खाएगा दो चार फिर मर जाएगा। अब जो सीता थी उसके पास तो बुद्धि थी कि भाई सोने का हिरण नहीं होता, उसने अपनी बुद्धि को यूज नहीं किया, ताले में बंद करके रखी हुई थी बुद्धि। और दूसरी बात, अगर हिरण सोने का है भी मान लिया तो तू तो दया की देवी है, तू उसे मरवा क्यों रही है? देवियां तो दयालु होती हैं, कभी जानवर को मारने की बात ही नहीं करती। और फिर तीसरी बात, भाई तू क्यों मरवा रही है? कहती है उसकी खाल को बिछा करके ना उस पर बैठ के ध्यान लगाऊंगी। तो कपड़ा बिछा लेती, जरूरी है कि पहले हिरण मारा जाए और फिर उसकी खाल बिछाई जाए फिर तू ध्यान लगाए? किसी को मार करके ध्यान लगेगा कैसे? तो अकल को यूज नहीं किया, बस सोना सोना सोना, हाय सोना सोना। तो सोने में ना आंख चौंधिया गई तो अकल चली गई। तो जब हम किसी पर आकर्षित होते हैं ना, वस्तु व्यक्ति वैभव पर, तो हमारी अकल चली जाती है और आंखें उस चीज में चौंधिया जाती है। तो फिर श्री राम ने क्या कहा कि अब इसकी आंखें चौंधिया गई तो इसको सोने की दुनिया में ही भेज देते हैं, जी भर के सोना देख ले। तो जैसे ही हिरण पे आकर्षित हुई सीधी कहां गई? अब जब हिरण सामने था तो कहा राम दूर चला जा, और जब सोना सामने आ गया, मिल गया सोना, जब हिरण नहीं मिला था तो राम भी नहीं चाहिए, पहले हिरण चाहिए, और फिर जब सोने की दुनिया में चली गई अब राम चाहिए। तो तेरे को कहीं शांति है भी कि नहीं? न सोने में शांति है, न राम के साथ शांति। राम साथ था तो सोना चाहिए, और सोने की दुनिया में चली गई तो राम चाहिए, कहीं शांति है भी? तो मन को एक जगह टिका के रखो, या तो सोना चाहिए तो उसी दुनिया में राजी हो जाओ, राम चाहिए तो राम के साथ राजी हो जाओ, कम से कम उलट पलट तो मत हो, अभी सोना अभी राम, अभी सोना अभी राम। तो बुद्धि को यूज करो कि मेरे मन को ये चीज क्यों खींच रही है, और खींचने वाली चीज कभी सच्ची नहीं होती है, खींचती वही है जो झूठी है। सच्ची चीज तो मन को आराम देती है, झूठी चीजें खींचती है, आकर्षित करती है। तो चेक कीजिए, देखिए कोई चीज आकर्षित तो नहीं करती, मेरे राम से मुझे दूर तो नहीं ले जाती, ऐसी कौन सी चीज है? कोई मीडिया, कोई नेट, आजकल सोने के हिरण तो नहीं होते लेकिन आर्टिफिशियल हिरण स्क्रीन पे दौड़ने वाले तो बहुत होते हैं, कोई व्यक्ति, कोई नेट का आकर्षण, मोबाइल का आकर्षण, बहुत हिरण है, वैरायटी वैरायटी। तो चेक करो किस पे समय शक्ति नष्ट तो नहीं होता, किसी के कारण आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं होती, योग कम तो नहीं होता, अमृत वेला मिस तो नहीं होता, मुरली में अलबेलापन तो नहीं आता, कौन सा हिरण मुझे खींच रहा है जिसके कारण मैं राम से दूर हो जाती हूँ। कितने हिरण मिले, प्राचीन हिरण और थे, आधुनिक हिरण और है। और लास्ट में एक और चेकिंग करेंगे, किसी से लगाव और झुकाव। ये भी बेशक अपनी देह से ही लगाव हो, अपने संस्कारों से, अपनी आदतों से लगाव हो, अपनी ही चीजों से बहुत लगाव हो, वो भी लगाव का ही रूप है। सब से या पर से, किसी से भी है। आत्मा का मूल रूप है, अकेली आती है और अकेली जाती है। स्वतंत्र है आत्मा, लगाव आत्मा को परतंत्र बना देता है। तो चेक कीजिए,
ஓம் சாந்தி. இஸ் பூமி பர் பவித்ர பூமி ஹை, சுத்த சாந்திமை ஆர் பவர்ஃபுல் வைப்ரேஷன் வாலி பூமி மே பேட் கர் அப் சபி நே खुद को देखा होगा, जो जो प्रश्न आपके सामने रखे उसका जवाब भी हर एक को अपना अपना मिला होगा. ऐसे तो नोट करते थे तो भी अच्छा था, अपना ही जवाब अपनी ही नोटबुक में या अलग कागज पर या बुद्धि में याद रख करके भी महसूस तो किया, रियलाइज किया कि क्या क्या हमारे अंदर अभी काम बाकी है जिसको हमें खत्म करना है, बदलना है, परिवर्तन करना है. और ये चीजों को महसूस करके जब इससे मुक्त हो जाएंगे, जिसको दूसरा कोर्स कहते हैं, हम दूसरे भी ऐसे ही क्लास लिबरेशन पर लेकर फिर इन बातों से हम लिबरेट कैसे हो. आपको जवाब जो भी मिला अपना अपना, तो उससे लिबरेट होने की भी बातें खुद ही खुद अपने लिए सोच सकते हैं. ये आपको अपने अपने होमवर्क देते हैं, इसके बारे में सोचना. और मुक्त होने का ये समय है, अभी नहीं होंगे तो कब होंगे. इसलिए सबसे पहले महसूस होना, ये महसूसता की शक्ति इस साइलेंस के स्थानों पर, साइलेंस के वातावरण में बाबा की याद हो और ऐसा वातावरण हो तो हम अच्छी तरह खुद को देख सकते. नहीं तो बाहर के वातावरण में क्या होगा. कई बार कोई कहते भी है कि आप में कमी है लेकिन महसूस नहीं करते. यहां अगर कोई कहेगा भी तो लगेगा कि इससे भी ज्यादा है मेरे में. आप जो आपको दिखाई देती है, आपने जो महसूस किया मेरे बारे में सबन संपर्क में आते हुए, जो कमी आपको लगी बरोबर है और उससे ज्यादा खुद फील करते, तो ये वातावरण का प्रभाव होता. तो बहुत ही स्पष्टीकरण अलग अलग बातों के लिए मिला है. अभी हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, पॉजिटिव बनना है और पावरफुल बनना है. ये तीन बातों को लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे तो जरूर लाइट होकर के उड़ते जाएंगे. उड़ता पंछी, स्वतंत्र पंछी, सब बातों से लिबरेट हो गए, मुक्त हो गए. तो ये स्थिति समय के हिसाब से अभी अपनी बनानी है, बनी नहीं है तो बनानी है जल्दी से जल्दी. हमारे उर्मिला बहन जी ने बहुत अच्छी रीति से सब बातों को स्पष्ट किया है, उन बातों को ध्यान पर रखेंगे. और ये जो सेशन में आपने महसूस किया उनसे लिबरेट होने की भी युक्ति बाबा ने तो बताई है, हर एक अपने अपने लिए वो करेंगे. तो आपको और उर्मिला बहन जी को हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने ज्ञानामृत भवन से यहाँ ऊपर आकर पांडव भवन में आकर के सब भट्टी वाले भाई बहनों को ये स्पष्टीकरण देख करके फिर महसूस कराने का पूर्ण प्रयत्न किया है. बहुत बहुत थैंक्स.
शुक्रिया, मेरा भाग्य बनाया.
आप आए तो आपको भी यहाँ आने का मौका बाबा ने दिया तो अच्छा है. हर एक एक दो को धन्यवाद देते हुए धन्य धन्य हो जाएंगे. ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से दोनों सेशन को आपने सबको सिखाया, बताया, सुनाया, तो थैंक्स देते हैं. आपने उनके बातों को सुन करके ये भी महसूस किया होगा कि कितना स्पष्टीकरण बुद्धि में है हर बात के लिए, कितने एग्जाम्पल है जो खुद भी समझे हैं, दूसरों को भी समझा रहे हैं. तो इस बातों को साथ में रखकर यहाँ से लौटे, कल जाना है, जब भी जाना हो साथ में लेकर के जाना. न सिर्फ उर्मिला बहन को याद करना, वो तो याद आएंगे ही क्योंकि उनकी बातें याद करेंगे, लेकिन बाबा ने उनके द्वारा हमको ये बताया तो बाबा भी याद आएगा। बाबा ने आपको प्रेरणाएं दी और यहाँ तक पहुंची, इसलिए बाबा को भी थैंक्स देंगे और बाबा को याद करेंगे। साथ साथ उर्मिला बहन ने भी ये बहुत अच्छी रीति से सबके सामने बातें रखी, तो हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। अभी 2 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठकर पूरा करेंगे और शाम को यहाँ हॉल में पहुंचेंगे 5 से 5:30 योग के लिए। बाद में क्लास रहेगी, उसके पहले 4:30 से 5 जैसे बताया है वो भी करना है।
Thank you.